Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो उनको भी तो भंडारा मिलना चाहिए, तो वो भी कभी कभी भंडारा काम है तो बढ़िया महात्मा ले जाकर रख देते हैं, वो भी समझते हैं कि बढ़िया मिठाई है, क्वालिटी का मिठाई आ गया आज। कोई घटिया महात्मा होगा तो कहेंगे ये तो थर्ड क्लास का मिठाई आ गया, और बढ़िया महात्मा होगा तो ये तो क्वालिटी का मिठाई आ गया है। बड़े पूंछ हिला हिला के खाते होंगे मछली, आशा यही और कुछ नहीं। मछली सब उसको मांस अंश को खा जाए और हड्डी सब जमीन के अंदर रह जाए, पानी के अंदर गंगा के अंदर रह जाए, तो ये आशय से हम लोग जल समाधि। और वैदिक विधि है कि सन्यासी को निरग्नि कहा जाता है, निरग्नि इसीलिए कि वो सब अग्नि का परित्याग कर देता है, गारपत्ती अग्नि का भी वो परित्याग करता है और आहवनीय अग्नि का भी वो परित्याग करता है, दाक्षिण अग्नि का भी परित्याग कर देता है। तीनों अग्नि का परित्याग कर देने के कारण अंत में मसान अग्नि का भी उसको निषेध कर दिया गया, ये आशय और कुछ भी नहीं है। इसलिए सन्यासी को जलाया नहीं जाता, अग्नि संस्कार नहीं करते, क्योंकि वह गारपत्य अग्नि छोड़ देता है, आहवनीय अग्नि छोड़ देता है। गारपत्य अग्नि आप गृहस्थ हैं इसलिए घर में अग्नि जलाओगे, भोजन बनाओगे, भोज बतेर करोगे, तब वह गृहस्थ नहीं है इसलिए उसको घर में अग्नि जलाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए गारपत्य अग्नि नहीं, उसने परित्याग कर दिया। गृहस्थ आश्रम परित्याग किया तो गारपत्य अग्नि का परित्याग कर दिया। और क्योंकि वह संन्यास ले लिया है, शिखा सूत्र का विसर्जन कर दिया, इसलिए वैदिक कर्म करने का अधिकार उसने खत्म कर दी। वैदिक कर्म करने का अधिकार खत्म हो गया, स्वाहा और स्वधा करने का अधिकार उसको, क्योंकि स्वाहा और स्वधा करने के अधिकार शिखा सूत्र वाले को है, शिखा सूत्र परित्याग करते ही स्वाहा और स्वधा करने का अधिकार उसको खत्म हो गया, तो आहवनीय अग्नि की भी उसने आवश्यकता नहीं पड़ी। आवनी अग्नि की आवश्यकता उसको होती है जो नित्य निरंतर स्वाहा स्वधा करता है, तो आवनी अग्नि खत्म हो गई। जब नहीं करना है तो आवनी अग्नि के बाद प्रथम आहुति दक्षिण अग्नि में करनी चाहिए। ये आजकल जो घर घर में जगह जगह हवन करते हैं, गायत्री हवन कराते हैं, वह विधि से कराते हैं कि नहीं कराते हैं? अग्नि को पहले आहवनीय करनी है और आहवनीय अग्नि को प्रथम आहुति के लिए दक्षिणा अग्नि बनाकर तब उसमें आहुति दी जाती है, तब बाकी आहुति उसी दक्षिणा अग्नि में दी जाती है। ये वैदिक विधि है। क्योंकि उसने शिखा सूत्र परित्याग कर दिया तो स्वाहा स्वधा करना नहीं, इसलिए आहवनीय अग्नि और दक्षिणा अग्नि दोनों का भी परित्याग कर दिया, तो तीन अग्नियों का उसने, किसने, सन्यासी ने तीन अग्नियों का परित्याग कर दिया हुआ होने के कारण गतार्थ ये हुआ कि चतुर्थ जो अग्नि है, मसान अग्नि शमशान अग्नि है, उसका भी उसे निषेध कर दिया गया, वो भी स्वरतः परित्याग। क्योंकि सन्यासी वैदिक विधि से जीते जी ही आठ पीढ़ी मातृपक्ष के और आठ पीढ़ी पितृपक्ष के सभी को पिंडदान करने के बाद अंत में अपना भी पिंडदान कर चुका होने के कारण, अंत्येष्टि कर्म भी वो पूरा कर चुका होने के कारण मरने के बाद अग्नि संस्कार की भी विधि नहीं है। 16 संस्कार वो सब जब सन्यास लिया तो जीवात्मा के जो 16 संस्कार हैं सन्यास अवस्था में पूरा हो जाता है। पूरा हो जाने के बाद फिर वह नारायण स्वरूप हो जाता है, इसलिए सन्यास के बाद वह नारायण स्वरूप होता है, तब उसका अभिवादन करने के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है कि नमो नारायणाय। हर सन्यासी को अभिवादन करने का यही वाक्य है कि नमो नारायणाय, कि आप नारायण स्वरूप हो गए, क्योंकि 16 संस्कार मरने के पहले ही आपने पूरा कर ली है, सपिंडी आपने पहले ही कर ली है और दैहिक कर्म आपने पहले ही कर ली है, बिरजा हवन में और दैहिक कर्म सब पूरा हो गया है, प्रेस मंत्र के बाद वो नारायण स्वरूप हो गया, तो फिर उस सन्यासी को जलाना निषेध किया। तो अब वो शरीर है उसका तो कहीं ना कहीं ठिकाना लगाना है, तो क्या करें? तो दो विधि है, यदि पवित्र नदी आदि है सन्निकट में कहीं उपलब्ध है तो उस शरीर को पवित्र नदियों में जल समाधि करके विसर्जन करो ताकि जलचर जीव उसको खा जावे, या फिर घोर कहीं जंगल है तो जंगल में ले जाकर छोड़ दो तो नवचर जीव उसको खा जावे, या फिर किसी जमीन में उसको समाधि दो, उसको थल समाधि कहते हैं। जल समाधि, थल समाधि और वायु समाधि, ये तीन ही समाधि का विधान शास्त्र में है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मानता नहीं है कि जंगल खुले में छोड़ दें और चील गिद्ध स्याल कुत्ते उसको नोचें, ये उसको मन में नहीं लगता। तो फिर ये दो समाधि देने की चलन आज भी है, जहां पवित्र जल है वहां जल समाधि देते हैं, और कहीं पवित्र नदियां उपलब्ध न हो तो जमीन खोदकर थल समाधि दी जाती है। तो हम पुरानी स्मृति सुना रहे थे आपको, उस स्मृति के साथ इतनी सारी व्याख्याएं हो गई, आपको लौकिक व्याख्या इसलिए सुना रहा हूं कि आपके घर में कोई संत महात्मा आवे और संयोग से हो खुदा न खास्ता आपके घर में उस शरीर छोड़ दिया तो क्या करें? तो घबराना नहीं ना, घबराना नहीं है, हो सकता है कई बार ऐसी घटना घटी है, क्योंकि जिस घटना का हम स्मरण कर रहे हैं अभी वह इसी प्रकार की घटना से संबंधित घटना था। तो उस समय आप लोगों को क्या करना है? तुरंत वो सन्यासी शरीर छोड़ दिया तो दीवार के सहारे उसको ऐसे बिठा देना और पद्मासन लगा देना, बस सिर में त्रिपुंड लगा देना, समाधि लगाकर बैठा हुआ जैसा दिखेगा, बैठा है बैठा है, और गाड़ी कर लेना और ले जाके नर्मदा या गंगा जी भागीरथी में जल में छोड़ देना। अब क्योंकि बम्बई में तो जमीन ऐसे ही आसमान छू रही है, एक स्क्वायर फुट के लिए वो भी फ्लैट के स्क्वायर फुट, जमीन का स्क्वायर फुट तो कहां मिलने वाला है, तो 40 50 लाख 55 लाख हो गया एक स्क्वायर फुट फ्लैट की जमीन, और कहीं एक फ्लैट खरीद के वहां समाधि लगाना संभव नहीं होगा, जमीन खरीद के समाधि लगाओ तो जमीन है ही नहीं तो क्या करोगे? तो उसके लिए एक ही उपाय है कि ले जाओ गंगा जल, यहां नजदीक आपके नर्मदा है, ले जा सको तो सीधे हरिद्वार पुराओ गंगा जी, इलाहाबाद पुराओ पहुंचाओ, नहीं तो नर्मदा नजदीक है वहीं ले जाओ, ये सभी नर्मदा ले जाते हैं साधुओं को। हाँ, तो उसी तरह पंजाब में एक महिला सन्यासी माता जी किसी के घर में थी तो वहीं शरीर छोड़ दिया उन्होंने, अब क्या करें? वो तो घबरा गए, तो फोन किया, क्या करें महाराज? तो बोले सीधे टैक्सी में डाल के गाड़ी में डाल के ले आओ हरिद्वार में, यहीं विसर्जन कर देते हैं नीलधारा में। तो बेचारे ले आए, तो आप लोगों को हम पहले संकेत दे रहे हैं, हाँ? मान लो कि आज शाम को ही ये शरीर छूट गया तो घबराना नहीं, फाड़ से पद्मासन लगा के रख देना, हाँ? और एक गाड़ी करके ले जाके नर्मदा गंगा जी में विसर्जन कर देना पत्थर बांध के, हाँ, खूब गोद में चारों तरफ पत्थर डाल देना, पेटी बनाना लकड़ी का, और यदि लकड़ी का पेटी न बना पाए तो बोरी का कंथान ले लेना और डालना, उसी को गठड़ी बना लेना है, और चारों तरफ पत्थर डाल के छोड़ देना, तो जमीन में बैठेगा सारी लाश पत्थर के चलते, तो फिर मछली खाएंगे भंडारा, खूब जलचर जीव खाएंगे। तो वो लेके तो आए, लेकिन वो गृहस्थ थे, गृहस्थीय संस्कार के अनुसार वो लंबा लेटा कर लिया, जैसे गृहस्थी लंबा ले जाते हैं, है? आदमी सोया जमी पर, लोग कहते मर गया, वो अपने था सफर में, वो आज अपने घर गया, लोग कहते मर गया, तो लंबा लेटा कर ले आए। अब वहां समाधि देनी विधि है तो पद्मासन में लगाकर बिठाना है, अब तो लंबा तो 8-10 घंटे में तो वो तो अकड़ गया लाश, तो अब पद्मासन कैसे लगाया जाए, है? तब वहां जल समाधि देते समय में आसन लगाना था, तो हमने जोर से उसके घुटनों में जोर से मारा एक पत्थर लेकर, हाथ में एक पत्थर उठा ली और एक हाथ से नीचे पकड़ लिया, एक हाथ से पत्थर से घुटनों में जोर से मारा, मारा तो उसके ढीले हो गए पार्ट पुर्जे, जब पार्ट पुर्जे ढीले हो गए तो ढीला हो गया तो दूसरे में मारा, दोनों ढीले हो गए, तो हाथ भी ऐसे लंबे थे तो यहां मारा जोर से पत्थर से, यहां मारा सब ढीले हो गए, नट बोल्ट तो नट बोल्ट कसा ही तो था, वो नट बोल्ट ढीले हो गए तो हाथ भी ढीला हो गया, पांव भी ढीला हो गया, तो बिठा दिया पद्मासन है। तो जब हम पत्थर मार रहे थे घुटने में तो उनके भक्त लोग कुछ आए थे, महिलाएं पुरुष भी थे, लेके जो आए थे उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को, जब हम पत्थर मारने रहे थे, अरे रे 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 रे, ये बाबा कैसा निष्ठुर है, कितना निर्दयी है, पत्थर से मार रहा है माता जी को, हे भगवान। अब माता जी वहां हो तब ना पत्थर से मारना न मारना इसके हिसाब करो है? वो तो पत्थर ही है, पत्थर के साथ पत्थर मारने में क्या आपत्ति हो? तो उनको तो वो अध्यास, पहले माता जी चैतन्य से संपर्क होने से उनका शरीर चैतन्य था तो ये मानते रहे, तो अभी भी वैसा ही है ऐसा मानते हैं, जबकि वो चैतन्य का संपर्क हट गया तो अब तो क्या हुआ, जड़ ही तो हुआ, तो अब क्या ये अरे रे 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 कहने की क्या जरूरत थी? जब उनको पद्मासन लगाया और पेटी में रखा शरीर को, तो वो पेटी पानी में न उतरे, उसके चारों तरफ पत्थर रखना था, हमने कहा लाओ पत्थर, तो पत्थर लाने वाले ने पत्थर लाए और हमने ऐसे फेंक दिया वो पेट बक्सा के अंदर, उनके सिर में लगा जोर से, अरे रे रे ये तो मार डाला, अरे वो पहले मर सकी है मुर सकी है तो क्या मार डाला, तो सब लोग गाली देने लगे मुझे, अरे कैसा निर्दयी है, कैसा निष्ठुर है, कैसा साधु है, अरे माता जी के सिर में मारा पत्थर से। ले जी, जबकि हमारे सनातन धर्म की विधि है कि लाश को जलाते समय में हाँ कपाल क्रिया करनी पड़ती है, कपाल क्रिया समझते हो ना आप लोगों ने किया है कि नहीं है? कपाल क्रिया अपने मां बाप के किया नहीं किया पता नहीं, कपाल क्रिया डंडे से मारना चाहिए खोपड़ी में, जब लाश जलती है जलने के बाद जो खोपड़ी रहता है उसको मारो पत्थर से, फोड़ो कपाल को हा? उसको कपाल क्रिया बोलते हैं, ठीक है फोड़नी, जब फूटे इस तरह न मारो तो ऐसे टच कर देना, आजकल यही करते हैं, वो समझते हैं कि उनको ज्यादा चोट लगेगा जोर से पत्थर मारने से, ये अध्यास है ये उन्होंने। तो वो हमको ये प्रसंग याद आ गया, इस प्रसंग से शरीर के साथ चेतना का संबंध होने से शरीर चैतन्य जैसा दिख रहा है, इसमें जो चेतना भाव है चैतन्य के संयोग से आया है, लेकिन परमात्मा में सूझ सत्ता है और जो चेतना है वह किसी की संयोग से नहीं, जैसे रसगुल्ले में मधुरता, जलेबी में मधुरता, खांड के शक्कर के संयोग से आया है, लेकिन स्वयं शक्कर में मधुरता किसी और के संयोग से नहीं है, है? शक्कर में जो मधुरता है मीठापना है किसके संयोग से है? ये उसका अपना स्वरूप है, और रसगुल्ले में जो मधुरता है वो शक्कर के संयोग से है, जलेबी में जो मधुरता है मीठापना है वह शक्कर के चाशनी के संयोग से, चाशनी में जो मधुरता है क्या है वो उसका अपना स्वरूप है, चीनी की जो मधुरता है वो तो अपना स्वरूप है किसी के संयोग से नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा में अस्तिता होनापना और भातिता चैतन्यपना ये उसका स्वरूप है, और वही उपादान कारण है उस अस्तिता और भातिता स्वरूपभूत ये जो परमात्मा है वह ये सारे जगत का उपादान कारण है। तो पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया था कि परमात्मा जगत का उपादान कारण है तो जगत के हर पदार्थ में परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन किसी को भी परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है तो उपादान कारण नहीं मानना चाहिए। इसका उत्तर यहां दे रहे हैं, परमात्मा की अनुभूति हो रही है, नहीं मान रहा है इसीलिए, नहीं जान रहा है इसीलिए वो परमात्मा को ग्रहण कर रहा हूं नहीं मानता, क्योंकि जगत के किसी भी पदार्थ को ग्रहण करोगे तो पदार्थ के ग्रहण के साथ ये दो वस्तु आपके द्वारा गृहित हो रहा है। दो वस्तु क्या? अस्तिता भातिता, उस वस्तु की होनापना वस्तु के ग्रहण के साथ आपको ग्रहण हो रहा है कि नहीं? घड़े को ग्रहण करते समय मिट्टी का ग्रहण हो रहा है कि नहीं आपसे? आभूषण को ग्रहण करते समय में सुवर्ण का ग्रहण हो रहा है कि नहीं? इसी तरह वस्तु को ग्रहण करते समय वस्तु की सत्ता का ग्रहण हो रहा है कि नहीं? ये सत्ता ही परमात्मा है, इसीलिए सत्ता रहित कोई वस्तु कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, मिट्टी रहित कोई घड़ा का ग्रहण नहीं कर सकता है, सुवर्ण रहित आभूषण कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। इसी तरह सत्ता रहित किसी भी नाम रूप को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो हर नाम रूप में पेपर वेट ये नाम और इस आकृति का ये रूप, ये दोनों में सत्ता और भाति ये उसके उपादान कारण से आया है। इसका उपादान कारण कौन है? परमात्मा। परमात्मा यहाँ किस रूप में गृहित हो रहा है? सत्ता और भातिता, प्रकाशित होनापना, वस्तु का होनापना और वस्तु का जाना जानापना, ये दोनों परमात्मा से आया है। इसलिए परमात्मा से भिन्न ये नहीं है, जैसे मिट्टी से भिन्न घड़ा नहीं है, सुवर्ण से भिन्न आभूषण नहीं है, इसी तरह परमात्मा से भिन्न ये वस्तु नहीं है। परमात्मा का ग्रहण हो ही रहा है, इससे क्या सिद्ध हुआ कि सारे जगत का उपादान कारण परमात्मा ही है? ये बात इस तीसरे श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी स्पष्ट कर रहे हैं। सत्ता स्फुरत्ते भावेशु कुता गत्य संगते बिंबादि दर्पण न्यायात इत्थं पृच्छन् प्रबोध्यते। दो दृष्टांत दिया है, एक लोहे में गर्मी कहां से आई, तो इसको तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि अग्नि संयोग से, अग्नि के संपर्क से आया है। लेकिन ये तो क्या हुआ कि मूर्त में अमूर्त का संयोग है, और ये जो संयोग से आया हुआ उष्णता, संयोग का तो वियोग होता ही है, संयोग का वियोग होता है। तब मूर्त अमूर्त संयोग, इसी तरह पहले लोहा होवे और उसके बाद अग्नि होवे, या पहले अग्नि होवे उसके बाद लोहा होवे, तब उन दोनों का परस्पर संयोग होवे, तब लोहे में अग्नि का संपर्क होगा, और तब कहेंगे कि ये लोहा गर्म है, लोहे में गर्मी का भाव प्रतीत होगा। तो इसी तरह शरीर अलग पहले सिद्ध है, आत्मा अलग पहले सिद्ध है, तो उस पहले सिद्ध शरीर में आत्मा का संयोग हुआ, तब ये शरीर में चेतना दिखाई पड़ा, ऐसा माना जाए क्या? इससे क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा से संयोग होने से पहले शरीर अलग था, ये मानना पड़ेगा, और बाद में आत्मा अलग था और आत्मा और शरीर का संयोग हुआ, क्योंकि अंत में आत्मा और शरीर का वियोग होने पर आत्मा अलग और शरीर अलग प्रतीत होता है। तो वेदांत इस प्रकार के संयोग जन्य अस्थि और भातिता का सर्वत्र अनुभव करना नहीं चाहता है। तब फिर ये किस तरह माना जाए? तो जैसे वृक्ष में उन बीज के सारे संस्कार वृक्ष में विद्यमान हैं, आपके नींबू में खट्टापन आया कहां से? उसके बीज में वो खट्टापना थे, वो संस्कार था, वही संस्कार उसके अंकुर में गया, वही संस्कार उसके पत्तों में, शाखा में, फूल में गया, और वही संस्कार उसके फल में विद्यमान हुआ, और वही संस्कार कालांतर में फिर दूसरे नींबू में जाएगा, वही संस्कार कालांतर में फिर तीसरे नींबू में जाएगा। ये संस्कार किसी प्रकार के दर बदर वस्तुओं में संक्रमण होता रहेगा। इसी तरह आत्मा की सत्ता और स्फूर्तता भी बीज से वृक्षों की तरह, इसी तरह से माना जाए तो ये भी नहीं होगा। तो फिर कैसे है तो व्याप्त? तो वेदांत क्योंकि विवर्तवाद को मानता है, विवर्तवाद को मानने के कारण अन्य जितने भी दृष्टांत हैं वेदांत में मान्य नहीं होंगे। वो और दार्शनिक लोग भले मान लें तो वेदांत दर्शन नहीं मानता है। आत्मा की हर नाम रूप पदार्थ में सत्ता और स्फूर्णता का व्यापकता मानने का एक ही दृष्टांत, जैसे विवर्तवाद। सर्प में होनापना कहां से आया? रस्सी से। सर्प दिखाई पड़ना कहां से आया? तो उसी रस्सी से। हाँ, डोरी में प्रतीयमान जो सर्प है उस सर्प के होनापना कहां से सिद्ध है? रस्सी से। दिखाई देनापना कहां से सिद्ध है? तो रस्सी से। अस्तिता और भातिता सर्प में उस रस्सी से आया है। रस्सी से भिन्न सर्प का अस्तित्व नहीं, रस्सी से भिन्न सर्प स्वतंत्र भासित नहीं होगा। इसी तरह विवर्तवाद जो अपने कारण में विवर्तित पदार्थ में जैसे अधिष्ठान व्याप्त होता है, ध्यान देना, मैं ये वाक्य को ध्यान दोगे तो वेदांत समझ जाओगे। जिस अधिष्ठान में जो वस्तु विवर्तित हुआ है, वह विवर्तित वस्तु में जिस तरह अपने अधिष्ठान के भाव व्यक्त होकर रहता है, उसी तरह ये सारे जगत के नाम रूपों में वह उपादान कारण भूत अधिष्ठान भूत उस परमात्मा सर्वत्र अस्थि और प्रकाश के रूप में ग्रहण हो रहा है, व्याप्त है। सत्ता स्फुरत्ति भावेशु कुता गत्य संगते बिंबादि दर्पण न्यायात इत्थं पृच्छन् प्रबोध्यते। इसी को बोलते हैं यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकम् असत्कल्पकम् असत्कल्पार्थकम् सदात्मकम् भासते। ये अन्वय करना, जिसकी सत्ता और जिसकी स्फूर्णता, स्फूर्णता का अर्थ भासता, प्रकाशपना, जिसकी सत्ता और प्रकाशता को लेकर असत्कल्पार्थकम्, असत नहीं, ध्यान देना, असत कल्पार्थकम्, कल्पार्थक का अर्थ असत होता हुआ भी प्रतीत होने वाले को कल्पार्थक बोलते हैं। असत होता हुआ भी प्रतीत होने वाले वस्तु को असत कल्पार्थक बोलते हैं। असत कल्प असत के तुल्य, अर्थ माने प्रतीयमान पदार्थ, असत कल्पार्थक। तो असत जैसे खरगोश का सिंह, वो असत है, असत कल्पार्थक नहीं है, वो असत है, सत प्रतिशत असत है, असत कल्पार्थक नहीं। जैसे बंध्या का पुत्र, वह सर्वथा असत है, असत कल्पार्थ नहीं। जैसे आकाश कुसुम, सर्वथा असत है, असत कल्पार्थ नहीं। लेकिन रज्जु सर्प सर्वथा असत नहीं है, असत कल्पार्थ है। सीपी में चांदी, वह असत नहीं है, अपितु असत कल्पार्थक है। असत होता हुआ भी प्रतीत होने वाले को असत कल्पार्थ कहते हैं, असत होने के कारण ही प्रतीत न होने को वह असत कहते हैं। असत और असत कल्पार्थ में इतना ही अर्थ है, इसलिए असत कल्पार्थ का नाम हो गया मिथ्या। असत होना अलग चीज है, मिथ्या होना अलग चीज है। मिथ्या को अप्रतीत नहीं कहते कहीं भी, प्रतीत होता है परंतु जिस रूप में प्रतीत हो रहा है उस रूप में वह नहीं रहता है, इसीलिए उसको मिथ्या कहते हैं। बंध्या का पुत्र तो प्रतीत ही नहीं होता है, इसलिए वह असत। रस्सी में जो सर्प है वह प्रतीत होता है लेकिन खोजने जाओ तो नहीं मिलता, इसलिए असत कल्पार्थक, इसलिए मिथ्या। वेदांत जगत को असत नहीं कहता है, असत कल्पार्थक कहता है, यानी मिथ्या कहता है। इस बात को फिर स्पष्ट करेंगे, और ज्यादा विचार करने जाएंगे तो समय बढ़ जाएगा, और आगे कल स्पष्ट करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।